नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पातुकर। आज हम नवरात्रि के प्रथम दिवस पर कोरोना और जिंदगी इस विषय पर आपको रूबरू कराने जा रहे अधिवक्ता गायकवाड़ सर जी से। नमस्कार गायकवाड़ जी।
जी जी नमस्कार सर। नमस्कार
सर जी, जैसा कि आज से नवरात्र प्रारंभ हुई है और दो वर्षों से हम कोरोना की मार झेल रहे थे और पिछले दो वर्षों में हमने मेरा पर्व मेरा घर घर में मनाया गया था और कोरोना में कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई और कई लोग इससे प्रभावित भी हुए और हम इस कोरोना को हराकर अभी कोरोना से थोड़ा उभर पाए हैं। तो इन परिस्थितियों में हमें इस वर्ष नवरात्रि का पर्व किस तरह मनाना चाहिए और कोरोना और हमारी जिंदगी में क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है?
देखिए सर, इसमें इस बात को अभी ये नहीं भूलना है कि कोरोना खत्म हो गया। आज भी देश में 2 लाख कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या है। इस समय था कि हम लोग 30,000 पे आ गए थे, लेकिन आज दूसरे दौर में ये पता चला है कि मतलब पिछले 157 दिनों के अंदर अभी भी 2 लाख के बीच में मरीज है। इसका मतलब है कि हमको अभी भूलना नहीं है और हमने इस लड़ाई को जीतने में जो कामयाबी हासिल की वो है हमारी सावधानी। अब बात आती है पर्व की, क्योंकि देखिए केरल में जो पिछली बार जो घटना हुई तो वहाँ की सरकार ने इसके दौरान छुट्टी दी, उसका प्रभाव हमको रात को केरल में दिखाई दिया कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो इतना ज्यादा सक्रिय हो गया था कि अब हमको सीखना चाहिए कि हमको भीड़ को इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है, धर्म बाद में आता है और धर्म ही हमको जिंदगी का असूल सिखाता है। तो हमको इस बात ध्यान रखना है कि जो सरकार का जो उद्देश्य था कि हम भीड़ ना करें और घर पे ही पर्व करें, क्योंकि हम 1-2 साल अपने पर्व को घर में मना भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरी शक्ति वैसे भी शांतमय वातावरण में ही स्थित होती है और भीड़ भाड़ में हम जाके हम अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी के साथ साथ अन्य लोगों की भी जिंदगी, क्योंकि मैं खुद इस कोरोना काल में उस घटना को नजदीक देखा, मेरी आई का खुद का देहांत मैंने देखा। हालांकि उसका कोरोना से देहांत नहीं हुआ था, लेकिन दवाखाने में जब उनको ले गया और जो नजदीक से जिंदगियों को देखा तो उस समय लगा कि धर्म से बढ़कर सबसे पहले मानव की जिंदगी है। ये बहुत जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ न करें। दूसरी चीज, हम लोग जो त्यौहार मनाए बड़े शांति से मनाए, क्योंकि अभी जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो शांति समिति की बैठक हुई उसमें कई जो बातें आई कि भाई डीजे का उपयोग न करें, हम लोग भीड़ भाड़ न करें। तो भी सरकार ने हमारा मध्य प्रदेश जिस हिसाब से सुरक्षित है काफी सुविधाएं दी है, लेकिन हम उन सुविधाओं का गलत उपयोग न करें, क्योंकि अभी जिंदगी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी अभी गई नहीं, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। और पर्व मनाने के लिए हम लोग भीड़ भाड़ न करें, घरों में रहकर ही अभी कुछ समय और अभी और 5-6 महीने की जरूरत है हमको, ताकि हम और अच्छे से जीत सके, क्योंकि ये हम सबका प्रयास है, भारत सरकार का प्रयास है, मध्य प्रदेश शासन का प्रयास है, कलेक्टर महोदय का प्रयास है कि हमने अपनी जिंदगी को बहुत सुरक्षित रखा, हम सुरक्षित है, ये सबसे बड़ी हमारी साधना और सबसे बड़ा एक अच्छा प्रयास का परिणाम है। जी
सर जी, जैसा कि जब भी हम देखते है नवरात्रि का जब समय आता है, चूंकि हमारे छिंदवाड़ा जिले से बहने वाली जीवनदायिनी पवित्र कन्हान नदी, इसका अस्तित्व और इस नदी से जुड़े हुए कई ऐसे दरबार और कई ऐसे मंदिर है माताओं के जो इस कन्हान नदी से जुड़े, तो इस संबंध में आप जिलेवासियों को पवित्र कन्हान माता से नवरात्रि के अवसर पर परिचित कराना चाहेंगे?
जी जी, हमारे छिंदवाड़ा जिले में दो जो बड़ी नदी मानी जाती है, पेच और जो कन्हान है, और नदी जो है माँ के रूप में, क्योंकि जितनी भी नदियां है दामोदर और ब्रह्मपुत्र को छोड़ के हम देखें तो सभी को स्त्रीलिंग का दर्जा है, मतलब माँ का दर्जा दिया गया, और माँ जो है जननी होती है, तो जिस माँ का गर्भ से हम लोग जन्म लेके जीवन का जीवन जीते है तो नदी भी हमारी माता है। आपको पता होगा कि आज से 6,000 साल पहले की जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो भी सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी, और उस समय आज से 6,000 साल पहले प्रकृति को पूजा मानी जाती थी, उस समय जल पेड़ पौधे इन सब की पूजा होती थी। तो आज मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोरोना का जो सेकेंड दौर आया, उस समय जो ऑक्सीजन की कमी हुई, तब हमको ये समझ में आया कि प्रकृति का क्या महत्व है। तो कन्हान जो है हमारी माता है, और उसके किनारे जितनी भी मंदिर है, चाहे वो जुनारदेव का हो, चाहे रामाकुना का हो, चाहे उसके समापन पूरे उद्गम से लेकर समापन तक के जो मंदिरों की स्थापना की गई, मतलब धर्म को नदी से जोड़ा गया। हम जो क्रियाएं करते वो धार्मिक क्रियाएं होती है, लेकिन उस धार्मिक क्रियाओं में हमको अपनी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए नदी का जो महत्व है उसको नहीं भूलना है। क्योंकि छिंदवाड़ा जिले उस दिन मैं अपने बच्चों को, मेरे जो बच्चा है बड़ा बच्चा, उसको मैं नदी दिखाने ले गया था, कन्हान नदी। तो उसने एक सवाल किया, बोले पापा, बोले ये नदी इतनी गंदी क्यों दिखती, इसमें ऐसे गड्ढे गुड्ढे क्यों है। तो मैंने कहा बेटा ये हम लोगों के द्वारा किए गए गंदगी का परिणाम है। और एक उस बच्चे को समझाना पड़ा कि नहीं, ये छिंदवाड़ा जिले की सबसे बड़ी नदी है और ये बहुत पवित्र भाव की नदी है। और उस पवित्र भावना को देखिए, हम लोग जो धार्मिक क्रिया, अभी नवरात्र में हम माता जी का स्थापना की, तो हम सिर्फ धार्मिक क्रियाएं करते, आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं करते, नैतिक क्रियाएं नहीं करते। जरूरत आध्यात्मिक और नैतिक क्रिया की है ताकि हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे। आज देखिए हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है, ओडिशा के बहुत सारे गांव समुद्र के अंदर समाप्त जा रहे, नदियां विलुप्त हो जा रही, जिस कनान में बारह माह पानी रहता है, आज देखिए वहां पे रेत का इतना अवैध उत्खनन हो रहा है कि कभी कभी लगता है कि हम तो अपनी प्रकृति के साथ पूरी तरह से अनैतिक काम कर रहे हैं। तो प्रकृति के साथ जब अनैतिक काम कर रहे हैं, तो आपने देखा अभी रिजल्ट क्या, सेकेंड जो कोरोना काल का दौर चला उस समय देखा कि प्रकृति के छेड़छाड़ का परिणाम क्या होता है। तो नदी को सुरक्षित रखना, और कन्हान जो है हमारी छिंदवाड़ा जिले की आन बान और शान है, और ये किसी एक व्यक्ति का, प्रशासन का ही प्रयास का मतलब वो नहीं है। हम सबको अपने अपने स्तर पे, खास करके नदियों में अपवित्रता, अभी देखिए मैं पिछले बार पढ़ा था कि नदियों में जो मछलियां हैं वो गंदगी की वजह से, उनको जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही। ये बात कन्हान के साथ भी हो रही है कि हम पूरा गंदगी वहां छोड़े। अब देखिए गंगोत्री है, यमुनोत्री है, नर्मदा, इन राज्यों की सरकारों ने इनको जीवित नदी का अधिकार दिया है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरीके से नर्मदा को जीवित नदी का अधिकार दिया है, वो हमारे, हम लोग भी मांग करते सामान्य नागरिक के रूप में कि कन्हान को भी वो दर्जा दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से उसका अवैध उत्खनन हो रहा है, जिस तरीके से उसको क्षति पहुंचाई जा रही, वो भी एक माता है, वो भी एक व्यक्ति है। और हम धर्म क्रियाओं के दौरान एक संकल्प ले कि हमारी प्रकृति का आधार हमारी नदियां है। क्योंकि आप देखिए पूरी संस्कृति उठा के देखिए, तो चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे पूजा स्थल हो, सारी नदियों के आसपास विकसित हुई। 6000 साल पहले की हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता, जो भारत की पहली नगरीय सभ्यता कहते हैं, वो भी नदी के किनारे बसी है। तो उस अवधारणा को हमको समझना है। और जिस तरीके से हमने साबरमती को साफ किया, हम गंगा को साफ करने का बीड़ा उठा रहे, तो वैसे ही नर्मदा जी को हम लोग सुरक्षित कर रहे, तो वैसे ही कन्हान क्यों नहीं सुरक्षित हो सकती। ये जिम्मेदारी केवल राजनीतिक नेतृत्व की नहीं है, प्रशासनिक नहीं, हम सबको, सबने मिलके, क्योंकि वो माँ हम सबकी है। और माँ, यदि 9 दिन हम माँ के एक भौतिक स्वरूप में माँ का पूजा अर्चना कर रहे, लेकिन वो तो जननी है, वो जीवनदायिनी है, पूरी सिंचाई जल प्रबंधन सारा व्यवस्था का आधार वो कन्हान माता है, उसको तो सुरक्षित रखने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और वो जिम्मेदारी का संकल्प हमको नवरात्रि के दौरान, हम दुर्गा की पूजा न करें, वो केवल धार्मिक क्रिया है, ठीक है, वो आस्था है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो कन्हान हमारे भौतिक स्वरूप में हम सबके सामने है, लेकिन उसके साथ कितना गलत कर रहे। फिर एक माँ के साथ जब गलत कर रहे हैं, तो फिर आप दुर्गा जी की पूजा करके कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी तो गलत हो रहा है। जी
सर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने बोला है कि प्राकृतिक संतुलन की आपने बात की है, तो अधिकतर धार्मिक क्षेत्र में देखा गया कि हर देवी देवता का आसन प्रकृति में बसे पशु पक्षी और प्राणी है। यदि हम गंगा माता की बात करें तो उसका भी आसन बदक बताया गया है। नर्मदा जी का यदि हम बात करें तो उसका वाहन मगर बताया गया है, और कई देवी देवताओं का वाहन कासव बताया गया है। और हमने अभी कन्हान नदी के भी संदर्भ में जब हमने छानबीन की, तो कन्हान नदी के उद्गम स्थल हिरदागढ़, जिसे पूर्व में हरियागढ़ कहा जाता था, वहां पर एक आदिवासी राजा का एक बहुत बड़ा किला था। उस किले के पास 2 कासव पत्थर के बने हुए थे, और वहां पर कछुआ कछुई की भी कहावत प्रचलित है। लेकिन वर्तमान समय में नदी और नालों और तालाबों में ये बदक कछुआ, इनकी संख्या नगण्य होती जा रही है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए साहब, संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसमें आर्टिकल 48 में ये बात लिखी गई है कि हमको अपने पर्यावरण की रक्षा करना है, सरकार की भी जिम्मेदारी, ये बताया गया। साथ ही साथ जो हमारा मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें 51 में ये भी है कि हमको अपने पर्यावरण की रक्षा करना है। लेकिन ये पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार का तो दायित्व है, लेकिन सरकार का ही दायित्व न माने, हम अपना भी दायित्व समझे। अब देखिए, मैं जब संसार आता रहता हूँ तो बहुत सारे लोग जो पूजा पाठ का जो कचरा है वो नदियों में छोड़ते हैं, है ना भाई। आपको ये समझना चाहिए कि हमारा जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, उस इकोलॉजिकल सिस्टम में जितना एक टाइगर का दर्जा है, बकरी का दर्जा है, सांप का दर्जा है, मतलब चूहे का दर्जा है, वही प्रकृति के सिस्टम में नदी का भी दर्जा है। और नदी के महत्व को हम समझना चाहिए, उसके प्रति हमारी आस्था बढ़नी चाहिए। इसलिए उनके जो वाहन है, चाहे नर्मदा माता का जो मगर है, आपने देखा होगा चंबल नदी में मगर सबसे ज्यादा मिलते हैं, टोर टोर मछली जो है, महाशीर जो है वो नर्मदा में मिलती है, वो हमारा राजकीय मतलब मछली है। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमको अपनी प्रकृति के साइकिल में नदियों के महत्व को समझना चाहिए। नदी हमारी संस्कृति का, हमारी विरासत है, उसको सुरक्षित रखना, क्योंकि पूरे प्रकृति का आधार नदी है। तो लेकिन हम लोग धार्मिक क्रिया तो करते हैं साहब, धार्मिक क्रिया करते हैं, लेकिन वास्तव में धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ हमारी प्रकृति के संरक्षण, क्योंकि भी महिलाएं जो है वट वृक्ष की पूजा करती है वट सावित्री के दिन, लेकिन उसके पीछे धागा बांधना एक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है, और आज से 6000 साल पहले की संस्कृति में भी यह है कि हमको वृक्ष की रक्षा का जिम्मेदारी लेना है, ये उसका धारणा है। और ये धारणा हमको प्रकृति में लाना चाहिए, ये हम सबके बीच में जाना चाहिए। भले ही आप पेड़ लगाओ ना लगाओ, लेकिन पेड़ काटने का अधिकार आपको नहीं है। हम जन्मदिन मनाते, लेकिन एक जन्मदिन में हम अपना पेड़, एक पेड़ लगा ले तो अरबों की संख्या में हम लोग हैं, तो हमारी प्रकृति संतुलित हो सकती है। अभी देखिए, भारत भूभाग पे केवल 22 मतलब लगभग 25% वन है था, जबकि 33% संतुलन के लिए चाहिए। हमारा जो ग्लेशियर है, गंगा ग्लेशियर, हर साल 30 मीटर पिघलते जा रहा है, कार्बन बढ़ते जा रहा है। कार्बन की मात्रा अभी देखिए 0.04 है वर्तमान में कार्बन प्राकृतिक तरीके से, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ रही है। तो तापमान बढ़ेगा, और तापमान को कंट्रोल करने का काम ये सब इकोलॉजिकल सिस्टम में जितने लोग हैं, चाहे वो नदी हो चाहे पेड़ पौधे, ये उसको संतुलित करते हैं। लेकिन हम मानव ने क्या करके रखा, उसको असंतुलित करने का प्रयास कर रहे, उसका परिणाम हमको सामने आ रहा, दिख रहा है। अब तो जरूरत है सावधान होने की। प्रकृति से हम जितना दूर जाएंगे, प्रकृति हमको उतनी दूर कर लेगी। क्योंकि माल्थस ने भी ये कहा है, एक सिद्धांत है उनका जनसंख्या का सिद्धांत, उन्होंने कहा है कि प्रकृति स्वयं को संतुलित करती है, आपको संतुलन करने की जरूरत नहीं, खुद ही करती है। आप देखिए, आज विश्व में करोड़ों लोगों की जनहानि हुई है कोरोना काल में, लेकिन वहाँ के लोग, आप पातालकोट के लोगों को देखिए, वहाँ कुछ नहीं हुआ उनको। पोर्ट ब्लेयर में देखिए, सुरक्षित लोग थे, मतलब प्रकृति के गोद में जो बसे हुए थे उनको कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ये सिद्धांत को हमको समझना जरूरी है कि हमको आज भी, हम चाहे मिसाइल से के राजा बन गए हैं, हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, हम चंद्रमा पे पहुंच गए, हम बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारी आधारशिला प्रकृति है, और प्रकृति के गोद में रहकर ही हम विज्ञान की प्रगति करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा आने वाले समय में, जैसे बताया गया है कि जो सूर्य का जो तापमान है 47 डिग्री चल रहा है, 47-48 डिग्री आता है, अभी तो केवल इंसान जूझ रहा है, हो सकता है कुछ साल बाद पानी, छोटे छोटे पक्षी, उसके बाद इंसान का भी एक कोरोना फिर वो दिखने में आएगा कि धूप से भी हम लोग मरेंगे। इसलिए जरूरत है प्रकृति को सुरक्षित रखने की, हमारी नदियों को सुरक्षित, क्योंकि नदियां एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल सिस्टम का अंग है। आप उसमें देखिए, पूरी प्रकृति पनपती है उसमें, और उसको सुरक्षित रखना जरूरी है। पर हम लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नदियों को तो ऐसा दोहन कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि भारत सरकार को, राज्य सरकार को, जो बड़ी नदियां है, जो जिसका महत्व है, उसको एक जीवित नदी का अधिकार देके, या आपराधिक जो क्षति पहुंचाते इन लोग के ऊपर कठोर कार्रवाई करके, इनको मतलब एक प्रकार के समाज से बहिष्कार के साथ साथ इनको हर सरकारी सुविधाएं जो प्राप्त होती है वो बंद कर देना चाहिए।
सर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि भाई नदी को जीवित नदी का दर्जा मिले, और जैसा कि आज नवरात्र का प्रथम दिवस यानी शैल पुत्री के दिवस के रूप में आज इसके हम मनाते हैं, तो जिसका सीधा सीधा संबंध प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्र के प्रथम दिवस शैल पुत्री और मानव जीवन और प्रकृति का, इसका यानी तालमेल क्या है?
देखिए, तालमेल अभी के संदर्भ में देखिए तो तालमेल उतना अच्छा नहीं है। आप देखिए, कोरोना काल में जब पूरे यातायात बंद थे, तो आपने देखा होगा प्रकृति इतनी सुंदर और साफ सुथरी दिख रही थी। इसका मतलब है कि प्रकृति को बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान मनुष्य का है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, अभी देखिए हाँ, जैसे जो स्टेचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में जो ना गुजरात में जो स्थापित किए सरदार पटेल साहब की, वहाँ पे ये देखने में आया है कि इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे, मतलब वो उतना इलाका प्रदूषित नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाहन चलाएंगे ताकि प्रदूषित ना हो। और दिल्ली में भी ये प्रयास हो रहा है ऑडिन वन, तो क्योंकि ये जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो उत्सर्जित हो रही है, ये हमारे लिए सबके लिए बहुत ज्यादा घातक है। अब देखिए, हम लोग अभी हवन करेंगे तो ये हवन एक विशेष प्रकार के पदार्थों के आहुति से निर्मित होती है, ये वातावरण को शुद्ध करते हैं, ये एक धार्मिक क्रिया का बहुत बड़ा अंग है। लेकिन हम लोग जो धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, उन धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ अभी सरकार ने कहा कि डीजे नहीं बजेगा। अब डीजे नहीं बजा अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक प्रकार का मानसिक संतुलन पे इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज, हम लोग अब नदी में विसर्जन करेंगे माता जी का, तो वो न करें, क्योंकि वहां पे जो कलर मिक्सअप होते हैं तो उससे पानी का संतुलन बिगड़ता है, वहां के जो जीव जंतु है जिनका साइकिल चलते रहता है, जैसे मैंने कहा कि मछलियां जो है ऑक्सीजन के अभाव में मरने जा रही है, मर रही है काफी कुछ, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम लोग कोशिश करें कि जो भी गतिविधियां हो, हम लोग प्रकृति को ज्यादा प्रदर्शित करने की कोशिश करें, और अब धार्मिक क्रियाओं को हम लोग पूजा पाठ तक सीमित न रखें, उसको मानव के बीच जन जागरण का एक काम करें कि हम लोग जो धार्मिक क्रिया करते हैं उसमें प्रकृति को सामने रखें, प्रकृति को प्रदर्शित करें, प्रकृति की बात करें। और अब समझ लेना चाहिए हमको कि सदी का जो बड़ा घटनाक्रम हुआ हम लोग के साथ, उसमें ये जरूरी समझ लेना चाहिए कि हम अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रखना है तो अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर प्रकृति सुरक्षित होगी तो ही ठीक है, अन्यथा जैसे आपने कहा कि जो संतुलन की बात है, तो मैं कहता हूँ ये तो पूरा संतुलन असंतुलन है बिल्कुल। और हम लोग केवल धार्मिक क्रियाओं के रूप में करते, उसमें किसी सामाजिक उत्थान, नैतिक उत्थान या प्राकृतिक उत्थान की बात नहीं करते, ये करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
सर जी, हमारा आपसे एक अंतिम प्रश्न, इस नवरात्र में माता के भक्तों को और क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि पिछले 2 साल में जिस तरह हमने कोरोना काल में अपनी जिंदगी गुजारी, और इस बार हम खुले हैं, थोड़ा खुलकर आए, और तीसरी लहर की से चपेट में बचने के लिए आप संदेश क्या देना चाहोगे?
देखिए साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में 4 तरह के पुरुषार्थ की बात की गई, उसमें सबसे पहला होता है धर्म। तो धर्म को सबसे पहले आपको परिभाषित करने की आवश्यकता है कि धर्म मतलब कर्तव्य होता है, और हम माता की एक शक्ति की आराधना कर रहे हैं, लेकिन उस शक्ति की आराधना के सही भावार्थ को समझे कि हम उस आराधना को क्यों कर रहे हैं। तो आराधना का उद्देश्य है सद कल्याण, मानव कल्याण, सद कल्याण मानव कल्याण हमारा उस पूजा अर्चना का मुख्य विषय होना चाहिए, और ये तबच हो पाएगा जब हम उस भावना को अंदर लाए। अब माता की शक्ति को हम साधना तो कर रहे हैं, हम अपने लिए तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सार्वजनिक जीवन के प्रति जिम्मेदार हैं? इसलिए साधना करिए, कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना आस्था का विषय है, लेकिन सबसे पहले हमको व्यक्तिगत तौर पे ये ध्यान रखना है कि हम मास्क का यूज करें, और अभी भी बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, हम पूजा तो बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं, लेकिन वैक्सीन लगाए, मास्क लगाए। जिस समय भारत सरकार घोषणा करेगी कि भारत कोरोना मुक्त हो गया, तब हम मानेंगे, क्योंकि आपको पता होगा WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया कि भारत में एक भी पोलियो का मामला नहीं है। तो जब पोलियो मतलब WHO या भारत सरकार जब घोषणा करेगी कि अब भारत कोरोना मुक्त हो गया, तो अन्यथा हमको आज भी धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ हमको इस बात का विशेष ध्यान देना कि जिस तरीके से माँ के आराधना के लिए बड़ा पवित्र भाव मन में लाते, बड़ा नैतिक भाव मन में लाते, वैसे ही व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझ के हम सार्वजनिक हित के, सुरक्षा के और उनके सुरक्षित जीवन की कल्पना करें, और धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ सब मानव के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए हम भीड़ न करें, मास्क का यूज करें, और कोशिश करें कि हम ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में न जाए, क्योंकि जो घटनाक्रम केरल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हमने उसके रिजल्ट देखे, हम पूरे विजेता है कोरोना के, हमने जीत चुके हैं, लेकिन हमारी अपनी गलतियां फिर से उस तीसरी चपेट की ओर न ले जाए, क्योंकि जो दूसरा दौर देखा मैंने खुद नजदीक से देखा है कि कैसे लाशें उठते थे और कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते थे, तो कितना भयावह स्वरूप था। यदि इसके बावजूद भी हम नहीं समझ रहे तो फिर हमारे धार्मिक क्रिया और मां शक्ति की पूजा करने का कोई औचित्य नहीं है। औचित्य तब है जब हम मानव कल्याण की, मानव हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आपने कोरोना और जिंदगी इस विषय पर नवरात्र के पावन पर्वों पर अपनी बात रखी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है।
नमस्कार।